पृष्ठ संख्या 256, अध्याय 25, वर्ग ब, पंडित सपन चौधरी। लखनऊ घराने के पंडित संतोष कृष्ण विश्वास के पास पंडित सपन चौधरी ने तबले की शिक्षा प्राप्त की। हाथ की शास्त्र शुद्ध निकास पद्धति से तबले पर की उनकी चाट अत्यंत नाद मधुर एवं सुरीली बजती है। उसी तरह बाएं का घुमारा मृदु होने के कारण उनका तबला वादन सभी श्रेणी के रसिकों को आनंद प्रदान करता है। सोलो वादन में वे अत्यंत कुशल हैं, किंतु वे विशेष लोकप्रिय हैं वाद्य संगीत की साथ संगत के लिए। उस्ताद अली अकबर खां, पंडित रविशंकर, पंडित निखिल बैनर्जी और अन्य ज्येष्ठ वाद्य वादकों के साथ उनकी तबला संगत अत्यंत उचित ढंग से और प्रभावपूर्ण तरीके से होती है। तबले का मार्गदर्शन करने के लिए पंडित सपन चौधरी का कैलिफोर्निया और अन्य देशों में दीर्घकाल तक वास्तव्य रहता है। इसी वजह से भारत में उनका वादन कम सुनने को आता है। उस्ताद जाकिर हुसैन। उस्ताद जाकिर हुसैन पंजाब घराने के खलीफा उस्ताद अल्लाह रखा के सुपुत्र एवं शिष्य हैं। पंजाब घराने का तबला और उसके साथ ही अल्लाह रखा का स्वयं का बनाया हुआ तबला उनकी निज की रचनाएं एवं उन्हें प्रस्तुत करने की उनकी शैली, इस सब की तालीम उस्ताद जाकिर हुसैन को उनके बचपन में ही प्राप्त हुई है। प्रखर बुद्धिमता एवं कठोर रियाज की सहायता से उन्होंने उत्तम तालीम को बौद्धिक स्तर पर और प्रत्यक्ष रियाज द्वारा आत्मसात किया है। उस्ताद जाकिर हुसैन को उस्ताद अहमद जान थिरकवा के संपर्क एवं मार्गदर्शन का लाभ भी बचपन में ही प्राप्त हुआ है। फलतः अपने घराने के साथ ही उन्हें पूरब शैली के तबले की पहचान होने से तबला वादन विषयक उनका दृष्टिकोण विशाल बन गया। उस्ताद जाकिर हुसैन की सौंदर्य दृष्टि अत्यंत सूक्ष्म एवं तरल होने से उन्होंने तबला और बायां इन दो वाद्यों से मनमोहक एवं कर्ण मधुर नाद कैसे निकाल सकेंगे, इस पर विचार करके अपना खुद का ही एक निकास तंत्र निर्माण किया और इन स्वरमय मोहक नादों से उन्होंने न केवल भारत के बल्कि अनेक राष्ट्रों के संगीत रसिकों के मनों को जीत लिया है। पृष्ठ संख्या 257। तबले पर बजाए जाने वाले सब महत्वपूर्ण अक्षर एवं शब्द उनके हाथ से नजाकत एवं सशक्तता के साथ बजते हैं तथा अपेक्षित परिणाम को साधते हैं। तबला वादन में साथ संगत करते समय सूक्ष्म काल के लघु भाव का गणित पर्याप्त मात्रा में अच्छा प्रभाव निर्माण कर सकता है। इस तथ्य को पहचान कर उन्होंने दक्षिणात्य संगीत की लयकारियों का भी अध्ययन किया है तथा उस लयकारी को वे तबले पर प्रस्तुत भी करते हैं। उस्ताद अल्लाह रखा और उस्ताद जाकिर हुसैन के वादन में यह लयकारी लघु भाव से व्यक्त होने लगी। फलतः हिंदुस्तानी संगीत की तबले की भाषा की अभिव्यक्ति दक्षिणात्य एवं हिंदुस्तानी संगीत की लयकारियों के मिश्रण से सजी और तबले पर के कर्ण मधुर नादों से व्यक्त हुई। उनकी ऐसी वादन कला श्रोताओं को नवीनता का आनंद प्रदान करती है और उन्हें समाधान भी देती है। उस्ताद जाकिर हुसैन के वादन से प्रतीत होता है कि उन्होंने तबले के सभी घरानों का अध्ययन किया है। श्रोत्री समाज की अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर उनकी पसंदगी का वादन करना उस्ताद जाकिर हुसैन की खासियत है, जिसकी प्रतीति तबले की जानकार विद्वत सभा में उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले तबले से श्रोताओं को विशेष रूप से होती है। ऐसे प्रसंग में वे घरानेदार एवं पारंपरिक रचनाएं प्रस्तुत करना पसंद करते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन सोलो तबला वादन को उत्कृष्ट रूप में करते ही हैं, किंतु उनकी विलक्षण प्रतिभा की अभिव्यक्ति की प्रतीति उनकी समर्थ एवं अनुरूप साथ संगत से श्रोताओं को हुआ करती है। उस्ताद जाकिर हुसैन उस्ताद अल्लाह रखा खां के द्वारा विकसित किए गए साथ संगत के तंत्र को और भी आगे ले गए हैं। गायन, वादन, सितार, सरोद और संतूर आदि सभी शास्त्रीय वादन प्रकारों की साथ संगत वे अत्यंत प्रभावात्मकता के साथ किया करते ही हैं, किंतु लय पर की उनकी हुकूमत एवं तबले से विविध नाद ध्वनियों को परिणाम कारक रूप में व्यक्त करने की उनकी क्षमता के कारण वे दक्षिणात्यों के तालवाद्य की कचहरी में अथवा पाश्चात्य ड्रम वादकों के साथ अत्यंत लीलया सहवादन भी किया करते हैं। उनके द्वारा की गई नृत्य की साथ संगत के माध्यम से उनकी हाजिर जवाबी और उत्स्फूर्त वादन कौशल की प्रतीति होती है। तो हरिहरन की गजल कमर्शियल कैसेट के साथ की गई साथ संगत में सुगम संगीत की साथ संगत सुंदरता के साथ कैसे की जाए, इसकी भी प्रतीति श्रोताओं को प्राप्त होती है। पृष्ठ संख्या 258। पंडित सुरेश तलवलकर। पंडित सुरेश तलवलकर जी की तबले की शिक्षा पंडित पंढरीनाथ जी नागेशकर के पास संपन्न हुई और उन्हीं के द्वारा उस्ताद अमीर हुसैन खां साहब की पूरब फरुखाबाद शैली का तबला उन्हें प्राप्त हुआ। सोलो वादन की शिक्षा के दौरान उन्हें लयकारी में विशेष रस होने से उन्होंने कर्नाटकी संगीत के रामनाड ईश्वरन नामक लय प्रभु मृदंग वादक से लयकारी और उसकी प्रस्तुति की विशेष शिक्षा ग्रहण की। फलतः उनके वादन में लय पर के उनके प्रभुत्व की श्रोताओं को निरंतर प्रतीति हुआ करती है। रसिक एवं मर्मग्राही वृत्ति के तलवलकर जी ने तबले के सभी घरानों की खास रचनाओं का विशेष अध्ययन किया और उसके जरिए उन्होंने अपनी स्वयं की एक अलग शैली निर्माण की। दिल्ली वादन शैली का और उस घराने के विचार सूत्रों का अध्ययन करके उन्होंने उन सूत्रों को अच्छी तरह आत्मसात किया। उनकी निर्माण की हुई वादन शैली के वैशिष्ट्य निम्नानुसार हैं। उनकी वादन बहुतांश में त्रितालेतर तालों में होता है। दूसरा, इन अन्य तालों में खानदानी पारंपरिक रचनाएं उपलब्ध न होने से शायद उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए पेशकार एवं कायदे स्वरचित होते हैं। तीसरा, उनके इस पूर्वांग प्रधान तबले पर दिल्ली बाज की छाप महसूस होती है। चौथा, गत टुकड़ों का उत्तरांग तबला पूरब बाज का होता है, किंतु उस पर पखावज की छाप श्रोताओं को महसूस होती है। पांचवा, उनके वादन में विविध आकार के और विभिन्न विश्रांति कालों के चक्रधार टुकड़े और तिहाई का अंतर्भाव होता है। छठवां, सोलो वादन में सांगीतिकता की अधिक प्रतीति हो, इस उद्देश्य से वे सोलो वादन लहरे की मदद से न करके गायन की बंदिशों की सहायता से करते हैं। सातवां, पंडित तलवलकर जी ने बिल्कुल युवावस्था से लेकर ग्वालियर, आगरा एवं जयपुर घराने के महाराष्ट्र के अत्यंत ज्येष्ठ और महान गायकों के साथ संगत करने का मौका कभी नहीं गंवाया। पंडित निवृत्ति बुआ सर नाईक, पंडित गजानन राव जोशी, पंडित राम मराठे, पंडित यशवंत बुआ जोशी, पंडित शरद चंद्र आसलेकर, उस्ताद खादिम हुसैन और वर्तमान पीढ़ी के पंडित उल्लास कशालकर आदि कलाकारों के साथ संगत अत्यंत सफलता के साथ करने के दौरान उन्होंने शास्त्रीय गायन की साथ संगत का एक अत्यंत प्रभावी तंत्र विकसित किया है। ख्याल के ठेके और ठेका भरी में उन्होंने अपना निज का एक स्थान निर्माण किया। उनकी साथ संगत गायक और श्रोता को हमेशा संतोष प्रदान किया करती है। पृष्ठ संख्या 259, आठवां, वाद्य संगीत की साथ संगत भी वे उत्कृष्ट रूप में करते हैं। उन्होंने कथक नृत्य की लय एवं उसके गणित का विशेष अध्ययन किया है तथा वे अनेक नृत्यकारों का मार्गदर्शन भी किया करते हैं। नौवा, तबला वादन के प्रस्तुतीकरण के साथ ही तबले की शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य वे अत्यंत समर्थता के साथ कर रहे हैं। संपूर्ण महाराष्ट्र में 100 से अधिक छात्र उनके पास तबला सीख रहे हैं, जिनमें से बहुत से विद्यार्थी पूर्ण काल तबले का व्यवसाय करने की ईर्ष्या से तबले की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यह शिक्षा प्रभावी रूप में हो इस उद्देश्य से वे महाराष्ट्र के गांव-गांव में कार्यशालाओं को आयोजित किया करते हैं। दसवां, तबले की शिक्षा सैद्धांतिक एवं प्रबोधनात्मक ढंग से हो इस दृष्टि से वे प्रयत्नशील हैं तथा संगीत की तबले की वृद्धि के लिए संपन्न होने वाले विविध सम्मेलनों एवं परिसंवादों के द्वारा वे अपना योगदान दिया करते हैं। आनिंदो चटर्जी, फरुखाबाद घराने के खलीफा उस्ताद मसीद खां के शिष्य ज्ञान प्रकाश घोष एक बहुत ज्ञानी और समर्थ तबला वादक थे। बंगाल में तबला वादन के प्रचार का बहुत बड़ा कार्य उन्होंने किया। उनके अनेक शिष्यों में से एक हैं पंडित आनिंदो चटर्जी। पंडित ज्ञान प्रकाश जी के कारण फरुखाबाद घराने का अच्छा खजाना आनिंदो चटर्जी को प्राप्त हुआ। ज्ञान प्रकाश जी के पास जाने से पहले आनिंदो जी ने तबले की शिक्षा अपने चाचा पंडित विश्वनाथ चटर्जी से प्राप्त की। फरुखाबाद और लखनऊ का तबला अच्छी तरह से सीखने के लिए उन्होंने लखनऊ के खलीफा उस्ताद आफाक हुसैन से भी विद्या ग्रहण की है। दाएं बाएं के असली कलात्मक निकास के कारण उनका तबला वादन अत्यंत उच्च स्तरीय एवं श्रवण मधुर होता है। सोलो और साथ संगत दोनों क्षेत्रों में वे प्रवीण और लोकप्रिय हैं। उनकी रियाज की पद्धति अलग प्रकार की है। सिर्फ उंगलियों और हाथों से ही वे तबला बजाते हैं, बाकी शरीर की हालचाल बहुत कम होती है। इसलिए उनका तबला श्रवणीय होने के साथ साथ प्रेक्षणीय भी होता है। त्रिताल में तो उनका सोलो वादन उच्च स्तर का होता ही है, मगर अनेक अन्य तालों में भी वे समर्थता से सोलो वादन करते हैं।